श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 23 श्लोक संख्या 8 दिनांक 8 जून 2015 स्पीकर इज ब्लेस कमल लोचन प्रभु
मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामैहं ददाति स्वपदांतिकम् वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलम श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता शिवशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौरङ्गिराधे वृन्दावनेश्वरि ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। अभी ग्वाल ग्वाल ब्राह्मणों के पास पहुँचे और ब्राह्मणों से भिक्षा मांगने के लिए अलग अलग प्रकार की युक्तियाँ चला रहे हैं। सबसे पहला कि छठे श्लोक में या पांचवें श्लोक में हमने देखा कि कृतांजलि पूत विप्रान, पहले कृतांजलि उन्होंने प्रणाम किया। कोई भी जाके बच्चे को देखने मात्र से दिल पिघल जाता है व्यक्ति का, उनको बुला के प्रेम करता है, कुछ न कुछ देता है, तो वैसे हो जाना चाहिए था ब्राह्मणों के साथ, हुआ नहीं है। कृतांजलि प्रणाम किया, जो प्रणाम करता है विनीत भाव को व्यक्त करता है व्यक्ति को, निश्चित रूप में दूसरे का हृदय पिघलता है, वो भी नहीं हुआ। तो ये ब्राह्मण को देखे भी नहीं, बाद में दंडवत किया फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, ब्राह्मण स्वाहा स्वाहा करते जा रहे थे। तो बाद में तो हे भूमिका भूमि देवता श्रुणुता, हे ब्राह्मण आप सुनो, तो खुलेआम बोले कि आप सुनो, वाचिक बोले, कृष्णस्य आदेश कारणः, हम कृष्ण के आदेश से आए हैं, प्राप्तान जानीत भद्रम वो भद्रम वो आपको शुभ हो, कृष्ण का नाम सुनने के बाद भी उनका हृदय पिघला नहीं, और आपको शुभ हो, भद्र हो, आपको सारे मंगलमय हो, ऐसा आशीर्वाद भी दिया, ऐसा उनको गुणगान भी किया। गोपान्नो रामचोदितान, बलराम ने भी हमको भेजा, ये कहने के बाद भी ब्राह्मणों का हृदय पिघला नहीं, ब्राह्मण उनके और देखे भी नहीं, अपने अपने यज्ञ में व्यस्त थे। तो सारे बच्चे थोड़ा नाराज़ हो गए, इतना सब कुछ करने के बाद कृष्ण ने भेजा, राम ने भेजा, राम और कृष्ण ये दो पवित्र नाम हैं, कृष्ण हमको बोला था कि वो लोग सो रहे हैं, जो यज्ञ करते हुए सो रहे हैं, मतलब क्या है, उनको यज्ञ का वास्तविक भोक्ता कृष्ण है वो नहीं मालूम, उनको नाम संकीर्तन करके जगाओ। इसलिए मंत्रतस चिंत तंत्रतस छिद्रम, शुक्राचार्य इस बात को कहते हैं, जो भी मंत्र में यज्ञ में यंत्र में कोई भी छिद्र होता है, सर्वम करोति निश्चिद्रम हरेर नामानुकीर्तनम, भगवान का नाम कीर्तन जो है सारे मंत्र में यज्ञ में जितने भी छिद्र होते हैं वो सारे छिद्रों को वो शांत करने वाला है, निश्चिद्र बनाने वाला है। खास करके इस कलयुग में जितने भी यज्ञ करोगे सारे यज्ञ में निश्चित रूप में दोष रहता है, क्योंकि उस यज्ञ के इस्तेमाल करने के लिए पवित्र वस्तुओं आपको नहीं मिलता है, शुद्ध घी प्राप्त नहीं होता है, कोई भी यज्ञ के लिए जो सामग्री होता है वो शुद्ध नहीं होता है, और उस प्रकार के ब्राह्मण नहीं है। उस प्रकार के ब्राह्मण होने पर भी मंत्रों का उच्चार इतना स्पष्ट नहीं होता है, अनेकों दोष होने की वजह से तो ऐसा कहा गया है कि यज्ञ के अंत में हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए, जो वास्तविक संकीर्तन यज्ञ है। इस कलयुग का यज्ञ है हरिनाम संकीर्तन। जब तक हरिनाम संकीर्तन नहीं करेंगे कोई भी यज्ञ का फल हमको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जो भी यज्ञ होता है अंत में हरिनाम संकीर्तन करते हैं। जैसे बलि महाराज के प्रसंग में बात आती है, बलि महाराज ने बड़ा यज्ञ का संपन्न किया और बीच में वामन देवाय उन्होंने दान दिया, तो पूर्णावती हुआ नहीं था, अभी यज्ञ का पूर्णावती नहीं हुआ। पूर्णावती होने से पहले ब्राह्मणों को दान दिया जाता है, ब्राह्मणों को संतुष्ट किया जाता है, उसके बाद ही जो पूर्णावती के मंत्रों को उच्चारण करके सारे बचा ऊंचा सामग्री को खड़े होकर ब्राह्मण याचना कर क्षमा याचना करते पूर्णावती करना होता है। तो बीच में इतना हंगामा हो गया तो वामन देव अपने आप को इतना विस्तार किए और एक पैर से उन्होंने पूरा नीचे की लोगों को, एक पैर से ऊपर की लोगों को, बाद में बलरामा ब्रह्मबंदी बनाया। सब कुछ होने के बाद शुक्राचार्य के पास जाके वामन देव कहते हैं, अभी आप यज्ञ कर रहे थे ना, पूरा करो ना, आगे बढ़ाओ, पूर्णावती करो। तब शुक्राचार्य कहते हैं कि जिस यज्ञ पुरुष को हम यज्ञ कर रहे हैं वो स्वयं उपस्थित हो गए तो यज्ञ की पूर्णावति हो ही गई। यज्ञ का अर्थ क्या है, सब कुछ भगवान को अर्पण कर देना, एवरीथिंग शुड बी ऑफर टू कृष्णा, ये यज्ञ का है। अभी आप स्वयं आके छीन लिए तो यज्ञ की पूर्णावति हो ही गई। तो तब उन्होंने कहा कि नाम लेने मात्र से यज्ञ की पूर्णावति हो जाता है। यज्ञ में जितने भी छिद्र है, मंत्र में जितने भी छिद्र होता है यानी कमियां होती है, सर्वम करोति निश्चिद्रम, सबको निश्चिद्र कर देता है, सबको पूर्ण कर देता है हरिनाम संकीर्तन। तो स्वयं जिसका नाम लेने से होता है तो स्वयं प्रकट हो तो यज्ञ की पूर्णावति हो गई, तो और यज्ञ को संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं करके ये शुक्राचार्य इस बात को कहते हैं। अभी उसी बात को या भगवान की नाम की महिमा को स्वयं कृष्ण ने कहा था, आप जाके उनको जगाओ, मेरा नाम या पहले बलराम का नाम लो बाद में मेरा नाम लेना। तो ग्वाल बालों ने सोचा कि हम इन दोनों को नाम लिया, जैसे छठे श्लोक में कृष्ण शब्द भी आया है राम चोदितम, कृष्णस्यादेश कारिण, कृष्ण का नाम भी उच्चारण किया राम का नाम भी उच्चारण किया, हम राम मत बलराम। तो दोनों का नाम उच्चारण करने के बाद भी इन लोगों का हृदय पिघला नहीं है, तो क्रोध आया। अभी पहले दीनता दिखाता है, समझ लो जो विनय दिखा हुए या दीनता से अगर नहीं मानता है तो बाद में क्रोध आता है, स्वाभाविक है। बड़े नम्रता से आप बात करो किसी से फिर भी बड़ा अकड़ के बैठा है, समझ लो अच्छा इतना नम्रता से बात की, इतना बात की, इतना अच्छा बात किया तो क्रोध आता है, स्वाभाविक है, वेरी नेचुरल। हाँ, जो शुरुआत में क्रोध करता है बाद में नम्र होता है, लेकिन शुरुआत में नम्र होता है ना बाद में क्रोध करता है। तो इतना नम्रता से बात किया, इतना अच्छा बात किया नहीं हुआ। तो कल के श्लोक में आपने सुना होगा, हाँ घासचारयंतम अविरुद्धोदनम, उसका ट्यून बदली हो गया, देखिए घासचारयंत, पिछले श्लोक में आप देखिए हे भूमि देवता श्रुणुता, बड़े विनम्र भाव से प्रस्तुत कर रहे ग्वाल बाल, बड़े विनीत भाव से हे भूमि देवता आप हमारी बात सुनिए। लेकिन कल के वाला श्लोक जो सातवां श्लोक में ने स्पष्ट रूप में कह दिया, क्या कहा, घास चारंतुम अविरुद्धोदनम, हम घास चराने के लिए कृष्ण और बलराम आए हैं नजदीक में और अविरुद्धोदनम, और उनको खाना चाहिए, उनको आप भोजन दो, सीधा बोला आदेश के रूप में बोला, उनको भोजन दो। रामाच्युतो वो लसत भूक्षौ, उनको खाना चाहिए, ये बोलने के बाद भी वो ब्राह्मण लोग स्वाहा स्वाहा करते जा रहे हैं। जिनको स्वाहा का मुख्य उद्देश्य कौन है, जब कोई चीज़ स्वाहा कहते हो तो क्या कहा जाता है, इदम अच्युता इदम मामवा स्वाहा, हाँ इदम केशवा इदम नामवा स्वाहा, तो इदम ये जो अच्युत का है ये मेरा नहीं है स्वाहा। तो ऐसे सारे मंत्रों के पीछे जिनका उद्देश्य है वो स्वयं खड़े हैं, आप कहीं और के कृष्ण को आप अर्पण कर रहे हो, आपको मालूम नहीं है। जैसे एक बार ऐसा हुआ था, श्री प्रभुपाद जी ट्रेन में जा रहे थे, उनके बहुत सारे शिष्यों के साथ में जा रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने कहा समोसा लेके आओ। पहले ज़माने में क्या होता था कि ट्रेन एक स्टेशन में बहुत लंबा लंबा रुकता था, आधा पौना घंटा रुकता था। अभी इनके जितने इनकी एक शिष्य थी, नाम मैं भूल गया किसका, वो कौन से प्रसंग में नाम है, दो तीन लोग गए एक दुकान में जाके बोले हमारे गुरु महाराज को समोसा चाहिए। बोला खा लो स्टेशन में बेचते ना। नहीं नहीं हम पकाएंगे। तो सब तेल वेल फेंक दिया, नया तेल डाला, सब समोसा वमोसा सस्ता गुजरी दुकान में। तो ये विदेशी लोगों को देखे तो दे दिया, तो समोसा बनाए, तो समोसा लेके प्रभुपाद जी के वो सब आए। आने के बाद अभी प्रभुपाद जी सिखाए भोग लगाना है, तो उनके पास तो ऐसा भोग लगाने के लिए कोई फोटो वोटो था नहीं, तो कृष्ण का फोटो था नहीं। तो प्रभुपाद जी इधर बैठे सीट में फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट का, दूसरे ओर वो माता जी क्या करने लगी, वो पूरा अच्छा सा कपड़ा बिछाया, प्रभुपाद जी को फोटो लिया और समोसा सब प्लेट में रखा और उधर रख के वो मंत्रों को उच्चारण करने चाह रही थी। प्रभुपाद ने कहा व्हाट आर यू डूइंग। प्रभुपाद आई एम ऑफरिंग टू यू प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ने कहा एक समोसा लिया, यस यू ऑलरेडी ऑफर टू मी। अब देखिए सामने प्रभुपाद जी है और इधर फोटो लगा के तो ठीक है उनकी मासूमियत है, लेकिन फिर भी बात ये है ये 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 एक दिन के जो ब्राह्मण है यही कर रहे हैं, जिन जिन कृष्ण को अर्पण करने के लिए ये जो अग्नि जो है कृष्ण की जिह्वा मानी जाती है तो उसमें स्वाहा स्वाहा करते जा रहे हैं, लेकिन ये यज्ञ के पीछे वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानते हुए जो यज्ञ करता है तो वही मूर्खता है। जो यज्ञ की भोक्ता भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, ऋषि कहते हैं मैं सारे यज्ञों की भोक्ता मैं हूँ, तो वो स्वयं सामने उपस्थित है तो आप बोलोगे मैं ऑफर करूँगा, ये कौन सा है। मान लो जी यशोदा है, कृष्ण सामने है, बलराम है, बोले रुको बेटा बैठो मैं भोग लगा के आती हूँ, ये कौन सी बड़ी भोग, ये क्या भोग लगाना हुआ। कृष्ण सामने बलराम सामने, निकाल के खिलाओ, यही तो भोग है। तो ये कि इस प्रकार की बात इसलिए आता है क्योंकि हर वस्तु हर शास्त्र के जो आदेश है उसके पीछे जो मर्म है उसका मुख्य उद्देश्य है वो जानना ज़रूरी है। अगर वो नहीं जानेंगे तो हम एक रिचुअल करते जाएंगे, औपचारिकता के रूप में करते रहेंगे लेकिन उसका वास्तविक मर्म है वो नहीं जानते हैं। भगवान को प्रसन्न करना ही हमारे सारे कार्यों का उद्देश्य है और भगवान का स्मरण करना ही हमारे सारे कार्यों के पीछे उद्देश्य है। तो इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, भक्तिरसामृत ने इस बात को कहा गया है कि स्मर्तव्य सततम विष्णु और विस्मर्तव्य न जातु चित सर्वे विधि निषेधास्युर यतयोरेव किंकराः। सारे विधि और निषेधों के पीछे एक ही उद्देश्य है, क्या है वो, स्मर्तव्य सततम विष्णु, विष्णु का हमेशा स्मरण करना, कृष्ण को कभी नहीं भूलना, ये दो चीज़ों के लिए ही सारे नीति नियम बने हुए हैं। हाँ और हम नियमों को पालन कर रहे हैं लेकिन नियमों के पीछे जो वास्तविक उद्देश्य अगर उसको भूल गए तो नियमों को पालन करने से पूर्ण फायदा नहीं मिलता है। शास्त्रों में लिखा गया भगवान का ध्यान करना चाहिए। बेचारा वो आया शास्त्र मंदिर आया और आके भगवान के सामने खड़ा होकर आँख बंद कर लिया, तो पूछो क्या करो, डिस्टर्ब मत करो मैं भगवान के ऊपर ध्यान कर रहा हूँ। अब देखो इधर सामने खड़ा है, देखो ना तुम जिसके ऊपर ध्यान कर रहे सामने खड़े हैं तो उधर आके आँख क्यों बंद करते हो। ये प्रायः सभी लोगों को देखा गया है कि जो भी है सब धार्मिक लोग हैं मंदिर में आते हैं, मंदिर में भगवान के सामने ठीक खड़े होकर आँख बंद कर लेते, तो बाद में जाने के बाद पूछो क्यों आए थे आप, भगवान का दर्शन करने आए थे। तो आप भगवान के सामने खड़े होकर आँख क्यों बंद किया, नहीं ध्यान लगा रहे हैं। अब देखो आप जहाँ सामने विग्रह के सामने नहीं हो तब ध्यान लगाओ, विग्रह के सामने तो आँख खोल को तो देखो कम से कम। तो ये सब बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं हम जो करते हैं या देखते भी हैं, ये इसलिए है क्योंकि एक रिचुअल एक औपचारिकता के रूप में सारे कार्यों को किए जा रहे हैं लेकिन औपचारिकताओं के पीछे जो सिद्धांत है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड इट। भगवान श्री कृष्ण अभी आगे आने वाले अध्याय में भी इसी बात को कहते हैं। जब नंद महाराज वो यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, गोवर्धन या इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे हैं, तो कृष्ण ग्वाल बालों सबको साथ में लेके गए, दूर से देख के, अस्तित्व में ही लीला समाप्त होने के बाद दूर से उन्हें देखा कि गोवर्धन में कुछ हलचल मची है, तो नज़दीक में जाके पिताजी से पूछने लगे, पिताजी आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ऐसा उन्होंने पूछा। तो पिताजी ने कुछ जवाब नहीं दिया। तब कृष्ण बाद में कहने लगे कि देखो हे पिताजी, आप सुनो, अगर आप कोई चीज़ करोगे लेकिन वो करने के पीछे अगर उद्देश्य नहीं जानोगे, क्यों कर रहे हो, वो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये बात सुन के नंद महाराज को ऐसा लगा, अभी ये बच्चा नहीं रहा, अभी बड़ा हो गया, अभी उसको बताना पड़ेगा। तो हर चीज़ के पीछे जो हम करते हैं उसका उद्देश्य जानना बहुत ज़रूरी है। अभी इधर ये ब्राह्मण लोग जो है स्वाह स्वाह किए जा रहे हैं, और एक ग्वाल बालों को क्रोध में कहा कि अन्न दो, चाहिए, गिव अस फूड। हाँ, ओधनम, ओधनम का अर्थ है अन्न, हमको अन्न दो। हाँ, अभी अन्न दो बोलने के बाद भी उनका हृदय पिघलाने, तो तुरंत लोग बोलने लगे कि नहीं, रामाच्युत, राम और अच्युत को क्या, वामच्युत वह लसत बुभुक्ष, उनको भूख लगा है। तो अगर कोई कहे, ब्राह्मण लोग सोचते होंगे इनको क्या देना, ये तो बाल बाल है, पहले ब्राह्मण लोग खाना चाहिए, बाद में अन्य क्षत्रिय वैश्य लोग खाना चाहिए, पहले जो भोजन है ब्राह्मणों को दिया जाता है, ये वैदिक रीति है, सबसे पहला भोजन जो है ब्राह्मणों को दिया जाता है, उसके बाद जो है उनका उनका भोजन शुरू होने के बाद, ऐसा नहीं भोजन खत्म होने के बाद, उनको पहले परोस के उनका भोजन स्टार्ट हुआ तो दूसरी जगह पे अन्य जो वर्ग के लोग हैं उनको उनको भोजन परोसा जाता है, ये वैदिक रिवाज है। तो ब्राह्मणों ने कहा हम नहीं खाए तो आपको कैसे दें, तो उसके जवाब में ये ग्वाल बालों ने कहा, नहीं, धर्म क्या होता है मालूम है, जिसको भूख लगता है पहले उसको खिलाना चाहिए, धर्म है। ये ब्राह्मणों को पहले नहीं खिलाना चाहिए, बाद में क्षत्रियों को, बाद में अन्य लोगों को, ये जो बात है ये निम्न रूल है, ये गौण नियम है, लेकिन पहले शास्त्रों का नियम है कि जिसको भूख लगा है अगर उसको नहीं खिलाओगे ये पाप माना जाता है। तो बड़े गुस्से से कहा, बाद में इतना कहने के बाद भी उनका वही फिर भी चल रहा है, साहस वहाँ चले जा रहा है और वो भी उनका काम चलते ही जा रहा है। तब आगे वो लोग कहने लगे, तयोर द्विज ओधनम, आप देखो इन दोनों को द्विज ओधनम अर्तिनः यदि तद्धया, तो बोलने लगे अगर आप के पास जो वेदों का उक्ति, जिसको भूख लगा है उसको पहले खिला देना चाहिए, आगे पीछे सोचो मत, मुझे मिलेगा कि नहीं, बचेगा कि नहीं, उसको मिलेगा कि नहीं, हाँ मेरा क्या होगा, उसको क्यों देना है, ज़रा सा भी कोई इस प्रकार शंका करता है वह धर्म माना जाता है। भूखे व्यक्ति को सबसे पहले खिलाना चाहिए, खासकर गृहस्थों का ये बड़ा कर्तव्य माना जाता है। एक बार जो प्रभुपाद जी का ऐसे संन्यास सेरेमनी प्रभुपाद जी स्वयं करते थे, और विवाह का यज्ञ में स्वयं प्रभुपाद जी करते थे। एक बार विवाह हुआ दो उनके शिष्यों का, तो शाम के समय प्रभुपाद जी इवनिंग वॉक के लिए जा रहे हैं, तो ये दोनों अभी गृहस्थ शिष्य है, मतलब चारों अपनी पतियों के साथ पीछे पीछे प्रभुपाद जी के पीछे पीछे चलते आ रहे हैं, और धीरे से एक शिष्य ने आके प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी आपने तो सुबह हमारा विवाह करा दिया, अभी गृहस्थ बन गए, तो हमारा कुछ स्पेशल कुछ इंस्ट्रक्शन है तो बताइए, स्पेशल इंस्ट्रक्शन कुछ गुही बात है तो बताइए, भी कोई है नहीं हम बताइए। तो प्रभुपाद ने कहा, बिफोर यू ईट गो आउटसाइड द डोर, आप खाने से पहले दरवाजे के बाहर जाओ, दरवाज़ा खोल के तीन बार बोलो, इज एनीबडी हंग्री, इज एनीबडी हंग्री, इज एनीबडी हंग्री, कोई भूखा है, कोई भूखा है, कोई भूखा है, तीन बार बोलो, कोई नहीं आता है तो जाके खा जाओ, अगर आता है तो आके खिला दो। तो ये सुने फिर वापस वो लोग कुछ समय के बाद प्रभुपाद वापस गए, प्रभुपाद दैट इज ओके, वो ठीक है, लेकिन कुछ गुही चीज बताइए ना, कुछ गुह्यतम कुछ होगा, विवाह हुआ है ना, कुछ सीक्रेट कुछ है तो बताइए, हमारी वरी व्यवहार दाम्पत्य जीवन जो है बड़ा अच्छा रहे, कैसे होना चाहिए बताइए। तो प्रभुपाद ने कहा कि बिफोर यू ईट गो आउटसाइड द डोर थ्री टाइम्स से एनीबडी हंग्री एनीबडी हंग्री एनीबडी हंग्री। तब ये सुनने के बाद तो दैट्स ओके प्रभुपाद, दैट्स ओके प्रभुपाद, एनीथिंग समथिंग स्पेशल? प्रभुपाद खाली उनके आंखों में देखे और चले गए। बाद में उनको हिम्मत नहीं हुआ दोस्त तीसरी बार पूछने की। वो आशा कर रहे थे कुछ बताएंगे, कुछ सीक्रेट बताएंगे। कोई सीक्रेट नहीं, यही सीक्रेट है, दिस इज अ सीक्रेट। तो ये धर्म माना जाता है, आगे पीछे सोचे बिना एक भूखे व्यक्ति को खिलाना, ये जो है वैदिक धर्म है। गांव में अभी भी देख सकते हैं, अभी भी मैं बचपन में देखा है इस बात को। मान लो कि कोई भी व्यक्ति घर के सामने खाली इतना कहता है मैं भूखा हूँ, तो भले यज्ञ का चीज़ क्यों ना हो, चाहे बना हुआ चीज़, कुछ ना कुछ उसको भूख मिटाने के लिए दिया जाता है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी दे देता है, वो समय में कोई गरीब था ही नहीं, छोटा सा घर होता तो भी, लेकिन खाने पीने भरपूर रहता था, कुछ ना कोई ना कोई उसको मिल ही जाता था। तो ये लोगों ने कहा कि तयोर द्विचा ओधनम अर्थिन्योर यदि। तो आगे उन्होंने कहा कि ये जो सिद्धांत है आर्थिन्य, जो आर्थी होता है यानी जो भूखा आता है आपके घर के सामने, तो उसको खिलाना चाहिए, वैदिक सिद्धांत है। उसके ऊपर आपको अगर विश्वास नहीं है, हाँ तो ने कहा कि विश्वास नहीं है, श्रद्धा अच्छा वो याचता धर्मवित्तम। तब उन लोगों ने कहा जो याचन करने वालों को देना चाहिए, इसके ऊपर अगर आपका श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो आप कौन हो? धर्मवित्तम। तो सरकास्टिकली बोल रहे हैं, एक तरीके से बताया जाए, हे ब्राह्मण आप कौन हो? धर्मवित्तम। धर्म को जानते नहीं हो क्या? आप तो धर्म को जानने वाले हो। वित्त मतलब जानना, उत्तम तमः मतलब क्या है? जो धर्म को जानने वाले में सर्वश्रेष्ठ, उत्तम, धर्मवित्तम। लेकिन ये धर्मवित्तम शब्द का और एक अर्थ है, एक सारस्वत अर्थ है। अगर उसको संधि विभाजन कुछ अलग दूसरी तरीके से करेंगे, धर्म वि तमः, तमः मतलब क्या है? अंधकार। वि मतलब विशेष रूपेण, विशेष रूपेण तमः। हाँ, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी, यज्ञ करने के बाद भी, जो इस प्रकार का आपका व्यवहार है, इससे पता लगता है आपके अंदर विशेष तमोगुण का छाया गया है। आपके चेतना में विशेष प्रकार का तमोगुण छा गया है। तो इस प्रकार ये ब्राह्मणों को इस प्रकार का द्विजा, ये द्विजा शब्द के द्वारा सरकास्टिकली व्यंग्य रूप में, व्यंग्य तरीके से बालकों ने कहा कि आप द्विज हो ना। द्विज का और एक अर्थ है, दो बार दूसरी बार जन्म लेता उसको द्विजा कहा जाता है, यानी मंत्र दीक्षा जिसका हुआ वो द्विज होता है। यानी एक तो माँ के गर्भ से जन्म लिया और ये पहला जन्म हुआ, और दूसरा जन्म क्या है? वो मंत्र दीक्षा गुरु से जो जन्म होता है उसको द्विज कहा गया है। और पक्षी को भी द्विज कहा जाता है, क्योंकि पहला वो जन्म होता है अंडा, दूसरा अंडे से बाहर निकलता है, इसको भी द्विज कहा जाता है। तो व्यंग्य तरीके से लोगों ने कहा कि आप वो किस प्रकार के द्विज हो? हाँ, ब्राह्मण जैसे मंत्र दीक्षाओं के द्विजा लिया है, या पक्षी जैसे हो? या द्विजा शब्द का और एक अर्थ है, जो दो लोगों से जन्म लिया है, यानी माता पिता से जन्म लिया। वो कुत्ता भी तो एक पुरुष और स्त्री संगति से एक बच्चा पैदा होता है। यानी तरीके से देखा जाए सभी द्विज है, क्योंकि दो लोगों से पैदे हुए ना, पुरुष और स्त्री के संयोग से पैदे हुए। तो ये दो शब्दों के द्वारा सरकास्टिकली व्यंग रूप में बालकों ने बड़े क्रोध से, एक तरीके से तो ब्राह्मणों को द्विज कहा, धर्मवित्तमा कहा, लेकिन क्रोध, इतना क्रोध आ गया, बालकों ने बड़े युक्ति के साथ ने कहा किस प्रकार का द्विज हो आप, किस प्रकार का धर्मवित्तम हो? हाँ, आप ये खाली दो लोगों से जन्म लिए हैं, माता पिता से जन्म लिए हैं, उस प्रकार का द्विज हो, या मंत्र दीक्षा हुआ कि नहीं आपको, मालूम नहीं कि धर्म मालूम है कि नहीं आपको? आपको ऐसा लगता है कि इतना वेद जानने के बाद भी, वह मान लो कि अज्ञान व्यक्ति है धर्म के विषय में, अधर्म को पालन करता है, उसको ही बड़ी बात है। लेकिन ब्राह्मण होने के बाद भी आप धर्म नहीं जानते हो, इससे पता लगता है कि आप विशेष तमोगुण छाया हुआ है। इसलिए धर्म वि मतलब विशेष, तमह मतलब तमोगुण, तो विशेष रूप का तमोगुण आपके चेतना में छाया हुआ है। तो पूरा उन्होंने सरकास्टिकली बात किया। उसके बाद अच्छा आप सोचते हो कि हम मूर्ख लोग हैं, हम जानते नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों का हो सकता है उनके मन में आया कि ब्राह्मण कहते होंगे अभी यज्ञ पूरा नहीं हुआ, यज्ञ के बाद आ जाना, पूर्णाहुति के बाद ही आपको भोजन दिया जाएगा, अभी नहीं है बाद में आओ, ऐसा कोई कह सकता है। अभी ग्वाल वालों ने अपना युक्ति चलाया, अपनी अपनी बुद्धि को दिखाया। आप हो सकते हो आप धर्मवित्तम, आप धर्म के विषय में अंधेरे में हो या तमोगुण में हो, लेकिन हम धर्म को जानते हैं। देखो आप जो यज्ञ कर रहे हो ना, वो सौत्रामण्या सौत्रामणि करके यज्ञ है, वो यज्ञ नहीं है आपका। आपका जो यज्ञ है वो साधारण सा नित्य करने वाला यज्ञ है। सौत्रामणि यज्ञ जो है वो काम्य कर्म है। वेदों में तीन प्रकार के कर्म हैं, नित्य नैमित्तिक काम्य। ये जो यज्ञ चल रहा था ब्राह्मणों का वो नित्य यज्ञ है, नित्य कर्म है। और जो नैमित्तिक होता है वोकेशनल है, कभी कभी किया जाता है कि कोई गृह प्रवेश हुआ, कोई इसका विवाह हुआ, यज्ञोपवीत हुआ, ये विशेष है, अकेशनल है। और तीसरा होता है काम्य। काम्य कर्म मतलब कोई कामना से किया गया यज्ञ है, मुझे ये चाहिए, इसको प्राप्त करने के लिए हम लोग कुछ यज्ञ, कोई कोई यज्ञ करता है, उसको काम्य कर्म कहा जाता है, काम यज्ञ कहा जाता है। तो ये ब्राह्मण को जो कर रहे थे वो नित्य यज्ञ था, रोज करते थे यज्ञ। तो ग्वाल बालों ने कहा आप जो कर रहे हो यज्ञ वो नित्य यज्ञ है, वो सौत्रामणि यानी काम्य कर्म के अंतर्गत आने वाला यज्ञ नहीं है वो। इसलिए ये जो यज्ञ में रूल क्या है, दीक्षायता पशु सम्मथा संस्थया, दीक्षा से लेके, अभी दीक्षा से मतलब क्या है, जब कोई ब्राह्मण लोग यज्ञ करने बैठते हैं या कोई भी यज्ञ कराता है तो उनको संकल्प दिया जाता है, संकल्प मंत्रों के द्वारा संकल्प लिया जाता है, उसको दीक्षा कहा गया। दीक्षायता मतलब जो संकल्प जो है ना, वो धर्म को ये उंगली में धारण करते हैं और आपके हाथ में वो चावल के दाने देंगे, मंत्राक्षत देंगे कि आपको बंद, वो आपको बोलेंगे बंद करके रखो, वो ब्राह्मण जो है उच्चारण करता जाएगा कि ये जो समय पे आद्य ब्राह्मण इति प्रवार थे, ये सब श्लोकों के द्वारा उच्चारण करके मैं ये कर्म कर रहा हूँ करके वो उधर छोड़ने के लिए कहते हैं, यानी मतलब वो संकल्प। तब से लेके क्या है, पशु का बलि, पहले के ज़माने में पशु का बलि हुआ करता था यज्ञ में, लेकिन अभी जो है वो कलयुग में वर्जित है। तो ये जो पशु का पशु संस्थया, इन दोनों के बीच में ये जो यज्ञ के लिए भगवान के लिए जो भोग बना है वो किसी को वितरण नहीं कर सकते। एक बार पशु का बलि हो गया उसके बाद जो है वो वितरण किया जा सकता है। बलि होने के बाद भी यज्ञ का 25% बचा रहता है, क्योंकि पूर्णाहुति बलि के बाद पूर्णाहुति के बीच में बहुत सारे कुछ क्रियाएं होती है, अनेक अनेकों चीज़ें होती हैं, शुद्धिकरण की चीज़ें, क्षमा याचना की चीज़ें, यंत्र में बहुत वो सब बड़ा साइंस है। तो ये बालकों ने कहा ये जो विज्ञान है यज्ञ का विज्ञान आप कर रहे हो, लेकिन आपसे अच्छा हम जानते हैं यज्ञ का विज्ञान। देखो अभी पशु का बलि हो चुका है, पशु का बलि होने के बाद आप ये जो भोग लगा है आप यज्ञ में, वो सारा भोग को वितरण कर सकते हो। दीक्षाया पशु संस्थया सौत्रामणिश्च सत्तमा अन्यत्र दीक्षायिता। तो दूसरा प्रश्न है, जो दीक्षा ले चुका है वो भी खा सकते हैं, आप भी खा सकते हो, और जो दीक्षा नहीं लिया है वो भी खा सकता है। अगर कोई प्रश्न पूछे हमने नहीं खाया, हम खाने के बाद आपको खाएंगे, नहीं, आप भी खा सकते हो और हम जो दीक्षा नहीं लिए है वो भी खा सकते हैं। इधर दीक्षा का अर्थ क्या है, जो संकल्प है वो तात्कालिक जो दीक्षा होता है, जो संकल्प होता है यज्ञ करने तक उसको हिलना नहीं चाहिए, ना वो ब्राह्मण को जो ऋत्विक है, ना यजमान जो करा रहा है, वो यज्ञ स्थली को छोड़ के नहीं जाना चाहिए जो संकल्प लिया है। हाँ, तो पशु का बलि होने के बाद वो जो यजमान है या ब्राह्मण है या ऋत्विक है या कोई अन्य लोग है वो यज्ञ भोग को ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए हम आपके पास आए अन्नम अष्टम ही अष्टम अन्न खाने में ही दुष्यति, उसमें कोई भी अपराध नहीं माना गया है। यानी दूसरे शब्दों में ये ग्वाल बाल जो है ये ब्राह्मणों का एक तरीके से उनका अवहेलना कर रहे हैं क्योंकि धर्म को जानते नहीं हैं। दूसरी ओर ये बात कहते हैं, अगर आप ये सोचते हो कि हमको धर्म नहीं मालूम, आप हमसे धर्म सुनो, हमसे यज्ञ की विधि सुनो। यज्ञ जितना भी जब तक करते जाओगे, यज्ञ करने तक कोई खाना नहीं चाहिए, लेकिन पशु बलि जैसे हो गया उसके बाद आप खुद भी खा सकते हो, वितरण कर सकते हो, इसलिए आप दे दो। तो आगे के श्लोकों में आपको ये बात आता है कि ये ब्राह्मणों ने इतना सुनने के बाद भी वो कुछ भी नहीं कहा, तो ग्वाल बालों ने कहा आप देना चाहते हो नहीं देना चाहते, हाँ या ना बोल दो, हाँ या ना बोलो। तो इतना हद तक कि वो हाँ भी नहीं बोले ना भी नहीं बोले। तो आगे ये ग्वाल बाल क्या करते हैं हमको आगे की श्लोकों में प्राप्त होता है। लेकिन बात ये है कि ग्वाल बाल के विषय में इधर कहा गया है कि ये जो सरल थे, उनका हृदय बहुत सरल था, ये यज्ञ के अनेकों विधि विधानों में उनका कोई रुचि नहीं था। उनका एक ही रुचि था किस प्रकार हम भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करें। इसलिए ग्वाल बाल ये अनेकों अनेकों युक्तियों को कर रहे हैं, ब्राह्मणों के ऊपर क्रोधित भी किया, उनको व्यंग्य रूप में बात भी किया। क्यों? इनका एक ही कारण था, कृष्ण को भूख लगा है, राम को भूख लगा है, हमको ये भूख लगा है, तो उनको संतुष्ट करना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। तो इसलिए ग्वाल बाल अनेकों अनेकों युक्तियाँ चला के ब्राह्मणों से बात कर रहे हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? क्वेश्चंस?